प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति का आतंक का राज्य है। सन 1793 से सन 1794 की अवधि तक के युग को हम आतंक का काल कहते हैं या आतंक का युग कहते हैं। रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं सजा की सख्त नीति अपनाई। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी दुश्मन थे, कुलीन और पादरी, दूसरे राजनीतिक दलों के सदस्य, दूसरी पार्टी के सदस्य होते थे, उसकी कार्यशैली से इत्तेफाक ना रखने वाले पार्टी के सदस्य, और जो रोबेस्पियर से इत्तेफाक नहीं रखते थे, जो उसको सही नहीं मानते थे, उनको, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। अगर न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटीन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता था। गिलोटीन दो खंभों के मध्य लटकती आरे वाली मशीन हुआ करती थी, जिस पर रख कर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटीन के नाम से जाना जाता है। रोबेस्पियर सरकार ने कानून तैयार कर मजदूरी और कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी, यानी उन्होंने मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर दिया कि इससे ज़्यादा पे कोई अपना सामान नहीं बेचेगा। गोश्त और पाव रोटी की राशनिंग कर दी गई, जो पाव रोटी है, ब्रेड वगैरह, उसकी राशनिंग कर दी गई कि ऐसा ना हो कि एक ही आदमी सारा खाना ले जाए, सबको मिलेगा, हिसाब से मिलेगा। कृषकों को, यानी किसानों को, अपना अनाज शहर में ले जाकर सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों पर बेचने हेतु विवश किया गया। अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के प्रयोग पर रोक लगा दी गई। जो समय महंगा सफ़ेद आटा मिलता था, उसके प्रयोग पर रोक लगा दी रोबेस्पियर ने। सभी नागरिक हेतु साबुत गेहूं से निर्मित और बराबरी की प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। बोलचाल और संबंधों में भी समानता का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत मॉन्स्क्यू या महाशय एवं मादम महोदया के बदले अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों और महिलाओं को सीतियोन नागरिक या सीतोयिन नागरिक नाम से संबोधित किया जाने लगा। यानी अगर पुरुष है तो उसे सीतियोन कहेंगे, और अगर वो लेडी है तो उसे सीतियोइन कहेंगे, है ना। चर्चों को ख़त्म कर दिया गया, यानी गिरजाघरों को ख़त्म कर दिया गया, और उनके भवनों को बैरक या कार्यालय बनाए गए। बैरक मतलब मिलिट्री की छावनी, और कार्यालय मतलब प्रशासन के लिए काम करने। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतना सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। अंततः जुलाई सन 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी करार दिया गया और गिरफ्तार करके अगले दिन गिलोटीन पे चढ़ा दिया गया। यानी जो रोबेस्पियर था, अपनी नीतियों के कारण उसे ही दोषी करार करके उसी ही गिलोटीन पे चढ़ा के ख़त्म कर दिया। डायरेक्टरेट शासन शासित राज्य, डायरेक्टरेट शासित राज्य की बात करते हैं अब हम। जैकोबिन सरकार के पतन के पश्चात, जब रोबेस्पियर मर गया तो अब क्या होगा, जैकोबिन सरकार के पतन के पश्चात मध्यम वर्ग के, समृद्ध पैसे वाले वर्ग के पास सत्ता आ गई। नए संविधान के अंतर्गत संपत्तिहीन, जिनके पास संपत्ति नहीं है, तबके को मत अधिकार से अलग रखा गया। यानी जो आदमी के पास प्रॉपर्टी नहीं है, वो वोट भी नहीं दे सकता। इस संविधान में दो चुनी गई विधान परिषदों की व्यवस्था की गई थी। इन परिषदों द्वारा 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया था। जो डायरेक्टरी थी उसमें 5 लोगों को नियुक्त किया गया था जो कार्यपालिका कानूनों को लागू करवाती। इस प्रावधान के माध्यम से जैकोबिनों के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा जैसे जैकोबिन अपनी जो रेवोस्फीयर था अपनी मनमर्जी चलाता था क्योंकि वो एक व्यक्ति था और कार्यपालिका का मुखिया था तो वो अपने हिसाब से चलाता था, इसलिए अब हमें क्या करना है एक डायरेक्टरी बनानी है जिसमें 5 लोग होंगे और वो मिलकर शासन करेंगे फ्रांस पे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं प्रायः विधान परिषदों से होता और वो कहता है कि बचने का प्रयास किया गया परंतु डायरेक्टरी का झगड़ा प्रायः विधान परिषदों से होता था और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती थी। डायरेक्टरी के राजनीतिक अस्थिरता ने फौजी तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट का उदय का रास्ता खोल दिया। सरकार के स्वरूप में इन सभी बदलावों के दौरान आज़ादी, विधि सम्मत समानता और बंधुत्वता प्रेरक आदर्श बने रहे। इन मूल्यों ने आने वाली सदी में न केवल फ्रांस अपितु बाकी यूरोप के राजनीतिक दलों को भी प्रेरित किया। औरतें शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम बदलाव लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय तौर से सम्मिलित थीं। उन्हें आशा थी कि उनकी हिस्सेदारी क्रांतिकारी सरकार में सरकार को और उनके जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। तीसरे स्टेट की ज़्यादातर महिलाएं आजीविका निर्वाह हेतु काम करती थीं। वे सिलाई बुनाई वस्त्रों की धुलाई करती थीं। बाज़ारों में फल फूल सब्जियां बेचती थीं या समृद्ध घरों में यानी पैसे वाले घरों में घरेलू काम करती थी, घरेलू नौकरानी का काम करती थी। ज़्यादातर औरतों के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के अवसर नहीं थे, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी पढ़ने लिखने की और ना ही ट्रेनिंग मिलती थी। मात्र कुलीनों यानी जो पैसे वाले परिवार की लड़कियां या तीसरे स्टेट की धनी परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वेंट में अध्ययन कर पाती थी यानी इंग्लिश स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ पाती थी। इसके पश्चात उनकी शादी कर दी जाती थी, पढ़ाई के बाद उनकी शादी की कर दी जाती थी। कामकाजी औरतों को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना होता था जैसे खाना बनाना, खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना और बच्चों की देखभाल करना आदि करना पड़ता था। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी। महिलाओं ने अपने हितों का समर्थन करने और उन पर चर्चा करने हेतु स्वयं राजनीतिक क्लब आरंभ किए और अखबार निकाले। अब महिलाओं ने अपने हितों के लिए चर्चा करनी शुरू कर दी और अपने क्लब बनाने शुरू कर दिए। फ्रांस के अलग अलग नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए। उनमें द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन सर्वाधिक मशहूर क्लब था। उनकी एक खास मांग ये थी कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। औरतें इस बात से हतोत्साहित यानी परेशान हुई कि सन 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक इनएक्टिव नागरिक का स्थान दिया गया था। महिलाओं ने मत अधिकार असेंबली हेतु चुने जाने और राजनीतिक पदों की मांग रखी। उनका सोचना था कि तभी नई सरकारों में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। शुरुआती सालों में क्रांतिकारी सरकार ने औरतों के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। ध्यान से सुनना से शासकीय स्कूलों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों हेतु स्कूली शिक्षा को ज़रूरी बना दिया कि औरतों की शिक्षा कंपलसरी कर दी गई लड़कियों की और सरकार ने स्कूल बनाए। अब पिता उन्हें अपनी मर्जी के विरुद्ध शादी हेतु बाध्य नहीं कर सकते थे लड़कियों को। अब माता पिता जो थे अपनी लड़कियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध शादी नहीं कर सकते थे। शादी को स्वैच्छिक अनुबंध यानी वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्ट माना गया और नागरिक कानूनों के अंतर्गत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। तलाक को वैधानिक रूप दे दिया गया और स्त्री पुरुष दोनों को इसकी अर्जी देने का हक दिया गया। अब औरतें व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थीं, कलाकार बन सकती थीं, छुटपुट व्यवसाय चला सकती थीं। फिर भी राजनीतिक अधिकारों हेतु महिलाओं की लड़ाई जारी रही। आतंक राज्य के दौरान सरकार ने महिला क्लब को खत्म करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगाने वाले कानूनों लागू किए। हम देखते हैं कि सरकार ने महिलाओं के क्लब खत्म करने की कोशिश की। कई विख्यात औरतों ने को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से कुछ को फांसी पर भी लटका दिया गया। मताधिकार यानी वोट देने की मांग और समान वेतन यानी एक बराबर वेतन आदमियों की तुलना में हेतु औरतों ने आंदोलन अगली शताब्दी में भी कई देशों में चलता रहा। मताधिकार का संघर्ष 19वीं शताब्दी के अंत यानी सन 1890 के आसपास और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ यानी 1910 के आसपास अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के माध्यम से जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी औरतों की राजनीतिक सरगर्मी को प्रेरक स्मृति के तौर पर जीवित रखा गया। सन 1946 में ध्यान से ध्यान दें अतः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं को मत अधिकार मिल गया। अब जरा हम दास प्रथा पे बात कर लेते हैं। फ्रांसीसी उपनिवेश यानी जो फ्रांस के गुलाम देश थे में प्रचलित दास प्रथा यानी गुलाम स्लेवरी सिस्टम का उन्मूलन जैकोबिन सत्ता के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारकों में से एक था कि भाई जो फ्रांस के गुलाम कंट्रियां थीं उनमें जैकोबिन लोगों ने जो दास प्रथा थी उसको खत्म करने की पूरी कोशिश की। कैरिबियन उपनिवेशों जिनमें मार्टिनिक गोडलेप और सेंट डोमिंग शामिल है नील चीनी और तंबाकू तथा कॉफ़ी जैसी चीज़ों के लिए अहम आपूर्ति करता था। यानी ये जो कैरिबियन उपनिवेश थे ये चीनी का उत्पादन करते थे, नील का उत्पादन करते थे, तंबाकू और कॉफ़ी का उत्पादन करते थे। अपरिचित और दूर देश जाकर काम करने के प्रति यूरोपियनों की अनिच्छा का अर्थ था बागान में परिश्रम की कमी। जो यूरोपियन लोग थे वो बागान में जाकर काम करने की इच्छा नहीं रखते थे, है ना? और उसका परिणाम क्या था कि वहाँ पे श्रम की कमी होने लगी यूरोपियन बागानों में। इस कमी को यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के मध्य त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया जाता था। और इस कमी को कैसे कि मजदूर के रूप में किसे लगाएंगे? हम अफ्रीकी लोगों को लगाएंगे। तो यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच जो त्रिकोण, तीनों को दास व्यापार द्वारा पूरा किया जाता था। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में आरंभ हुआ। 17वीं शताब्दी मतलब सन 1600 के आसपास शुरू हुआ। फ्रांसीसी सौदागर बोर्डो या नहतन बंदरगाह से अफ्रीकी तट पर जहाज ले जाते थे जहां वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। तो ये जो सौदागर होते थे, फ्रांसीसी सौदागर, ये वहां पे जाते थे बंदरगाह पर और वहां से अफ्रीकी मतलब बंदे ले जाते थे जहां वो दास के रूप में उनका यूज कर सकें, है ना? सरदारों से खरीदते थे। दासों को दाग कर और हथकड़ी डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियन देशों तक 3 महीने की लंबी समुद्री यात्रा हेतु जहाजों में ठूस दिया जाता था। दागना व्यवस्था मतलब कैसे कि कि गरम सलाख लगा के उसको निशान दिया जाता था, उसे हम बोलते हैं दाग व्यवस्था। और हथकड़ी मतलब हाथ पैर बांध के ले जाते थे, और ये जब ले जाते थे पानी के जहाज़ के थ्रू ले जाते तो 3 महीने लगते थे। और इसी 3 महीने ले जाने के चक्कर में वो ठूस ठूस के लोगों को ले जाते थे जहाज़ के अंदर। दास श्रम के आधार पर यूरोपियन बाज़ार में चीनी, कॉफ़ी और नील की बढ़ती मांगों को पूरा करना मुमकिन हुआ। फिर क्या होता था, इन दासों को खेतों में ले जाते थे, उनसे काम करवाते थे, जिससे ये चीनी का उत्पादन बढ़ा, कॉफ़ी का उत्पादन बढ़ा, नील का उत्पादन बढ़ा, तंबाकू का उत्पादन बढ़ा। बोर्डे ये पतन बंदरगाह का नाम, जगह का नाम है जहाँ पे पानी के जहाज रुकते हैं। बोर्डे तथा नतने जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन गए। 18वीं शताब्दी यानी सन 1700 के आसपास में फ्रांस में दास प्रथा की ज़्यादा आलोचना नहीं हुई। नेशनल असेंबली में लंबी बहस चली कि व्यक्ति के मौलिक अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा समेत समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाएं या नहीं, लेकिन दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों की खिलाफत का भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। परंतु अंततः सन 1794 में कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास की मुक्ति का कानून पारित कर दिया, पर यह कानून एक छोटी सी मियाद तक ही लागू रहा। 10 वर्षों बाद नेपोलियन ने दास प्रथा फिर से शुरू कर दी, यानी 1804 में। बागान मालिकों को अपनी आर्थिक हितों साधने हेतु अफ्रीकी नीग्रो जो अफ्रीका के काले लोग थे उनको नीग्रो कहते हैं ना, अफ्रीकी नीग्रो लोगों को दास बनाने की आज़ादी मिल गई। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम दौर पर दास प्रथा का उन्मूलन सन 1848 में हुआ। तो आज का टॉपिक इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।